आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपने कार्य को कर रहे होंगे और पढ़ाई को काफी इंजॉय कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले ऑडियो में ही मैंने ये चर्चा की थी कि सत्ता की साझेदारी क्या होती। आज मैं आपको उससे थोड़ा आगे लिए चलूंगा। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त सावन, और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस ऑडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों होती। हमने पिछले भागों में पढ़ा कि जो शासन है वो तीन भागों में बंटता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। इससे क्या होता है कि किसी एक को तानाशाही बनने का मौका नहीं मिलता है। हमने दो उदाहरण लिए, एक बेल्जियम के थे और दूसरे श्रीलंका के, और फिर हमने उससे यह भी जाना कि बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों से कि बेल्जियम और वहाँ सत्ता की बंटवारा किस प्रकार हुआ, सत्ता की साझेदारी किस प्रकार हुई। फिर हमने यह भी देखा था कि बेल्जियम ने तो बहुत अच्छे से सुलझा लिया था, लेकिन श्रीलंका में मामला थोड़ा उलझ गया था। आइए आज हम इस विषय पर चर्चा करें कि सत्ता की साझेदारी होती ही क्यों है। एक ऊपर में देखिए आपको फोटो दी गई है, है ना, जर्मन इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना। एक कार है जिसकी दो स्टीयरिंग दी गई है ना, चलिए उसके बारे में जरा बाद में बात करेंगे, मगर आइए सबसे पहले हम सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है इस विषय पर बात करते हैं। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के अस्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, उसके पक्ष में क्या तर्क है? पहला तर्क है कि भैया ठीक है, इससे बंटवारा सामाजिक समूह के बीच टकराव नहीं होता। देखिए कुछ समूह मान लें जो अल्पसंख्यक हैं या जो कम हैं, तो उनकी अपनी संस्कृति होती है, अपनी भाषा होती है, अपने विचार होते हैं, अपनी पूजा होती है ना। जो बहुसंख्यक हैं उनके अपने विचार होते हैं, कुछ अलग होते हैं। और अगर आप बहुसंख्यक अल्पसंख्यक पर अपनी थोपते हैं, जैसे आप ही मान लें कि आप ही पढ़ाई थोप दी जाए, आपको खेलने का बहुत मन कर रहा है लेकिन नहीं नहीं पढ़ने के लिए बैठा दिया जाए, नहीं आप पढ़ने बैठो, है ना, और शिक्षक गण मिलकर आपको लगातार पढ़ाते जाएं, तो फिर क्या होगा? आपके स्वर विरोध में उभरेंगे, आप बोलेंगे सर हम नहीं पढ़ेंगे, हमें जाने दीजिए। या हो सकता है कि आप याद ना करें, कक्षा में शोरगुल करें, दूसरे तरीके से अपने विरोध जताएं, लेकिन आप विरोध करेंगे। देश में भी लगभग ऐसा ही होता है, जब बहुसंख्यक कहीं हो और वो अल्पसंख्यकों को मतलब उस तरह से अधिकार ना दे, अल्पसंख्यक अपने अधिकार के लिए खड़े होते हैं, वो विरोध करेंगे, विद्रोह करेंगे और इससे टकराव बढ़ेगा। अब जब टकराव बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चों? टकराव बढ़ेगा तो देश पीछे जाएगा। अल्पसंख्यक जो कि उनकी अपनी संस्कृति और जो भी अपने अपने इंडिविजुअल थिंग्स उनके पास थे, जो उनके पास अच्छी चीजें थी, उसको वो देश के विकास के योगदान में नहीं लगाएंगे और देश धीरे 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 नीचे जाएगा। तो पहला तर्क तो यही है कि सत्ता की साझेदारी कर दीजिए, फिर उसके बाद जो होता है, क्योंकि उन्हें भी लगेगा कि नहीं, ये जो सत्ता है, जो शासन है, इसमें हमारी भी भागीदारी है, हम भी हिस्सा ले रहे हैं और ये नियम कानून हम पे थोपे नहीं गए हैं, हम भी मिलके बना रहे हैं, हमारे भी कुछ अधिकार हैं, है ना, तो वो इससे टकराव जो है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बाईं तरफ अंकित कार्टून में जर्मनी की एक समस्या का संकेत किया गया है। वहां क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नामक दो बड़ी पार्टियों की गठबंधन सरकार है। ऐतिहासिक रूप से ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी रही हैं। सन 2005 के चुनावों में इन दोनों में से किसी को अपने बूते सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला, इसलिए इन्हें गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। दोनों दल विभिन्न नीतिगत मामलों पर अलग अलग पक्ष लेते हैं, फिर भी यहाँ साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। देख रहे हैं आप, एक कार दी गई है, दो स्टीयरिंग है, एक इधर घुमाना चाहता होगा, एक इधर घुमाना चाहता होगा, लेकिन फिर भी ठीक है, चलिए अब दोनों मिलकर फैसले ले रहे हैं, तो गाड़ी चल रही है जैसे भी चलनी चाहिए। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है, इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है और वह बात कहीं ज्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। अगर मैं कहूं कि कक्षा में भागीदारी कक्षा की आत्मा है, मान के चलिए कि आप पूरे कक्षा में समन्वय नहीं, मीन्स आप सब एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, आप सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो फिर क्या होगा, आपकी कक्षा का प्रदर्शन गिरेगा, है ना। और मान लीजिए आपकी कक्षा है और बहुत समन्वय है, कुछ किन्हीं का मैथ अच्छा है तो वो सबों को मैथ बताते हैं, किन्हीं आप में से किन्हीं की ज्योग्राफी बहुत अच्छी है तो दूसरे बच्चों को ज्योग्राफी समझने में मदद करते हैं, तो इससे क्या होगा, पूरे क्लास का प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। तो सत्ता की साझेदारी जो है वो लोकतंत्र की आत्मा है। आत्मा मतलब उसके बिना लोकतंत्र है ही नहीं, क्योंकि लोकतंत्र लोकतंत्र लोगों का शासन, और लोग एक दो तो होंगे नहीं, लोग तो बहुत सारे होंगे, और जब बहुत सारे लोग होंगे और फैसला क्या होगा, उनकी मर्जी से मिलना चाहिए, उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए। तो अच्छी सरकार वही होगी जो लोगों को ये अवसर देगी वो सत्ता में भाग लें और जो भी निर्णय सरकार का हो उसमें उनकी भी भागीदारी हो। इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। ये दो तर्क दिए, पहला तर्क जो था वो युक्तिपरक था। युक्तिपरक का अर्थ हुआ बिल्कुल हानि लाभ का हिसाब लगा के जो आप उचित बात बोलते हैं, तौल ताल के बोलते हैं वो, है ना। और जो नैतिकता होती है वो ये होता है कि आप उसमें सही गलत नहीं देखते हैं, ठीक है, उसके बारे में विचार किया जाता है, उससे देखा जाता है कि चीजें क्या निकल कर रही है। जैसे इसमें देखिए तो वो आत्मा है इसलिए सही है, तो कोई युक्ति नहीं बताई, कोई लॉजिक नहीं दिया गया कि इससे फायदा होगा या घाटा होगा, ऐसा नहीं। लेकिन पहले तर्क में बताया गया है कि इससे फायदा होगा, वो भी क्या, कि सामाजिक टकराव आपके कम हो जाएंगे। एनीते बेल्जियम के उत्तरी इलाके के एक डच माध्यम स्कूल के स्कूल में पढ़ती है। फ्रेंच बोलने वाले उसके अनेक स्कूली साथी चाहते हैं कि पढ़ाई फ्रेंच में ही हो। सेल्वी श्रीलंका के राजधानी कोलंबो के एक स्कूल में पढ़ती है। वह और स्कूल के बहुत से दोस्त तमिल भाषी हैं और इनके माता पिता के पढ़ाई का माध्यम तमिल ही रखना चाहते हैं। कौन सी सरकार एनीते और सेल्वी के माता पिता की इच्छा पूरी कर सकती है, किसे सफलता मिलने की संभावना अधिक है और क्यों? देखिए, एनीते तो बेल्जियम में रह रही है, उसके पढ़ाई बहुत चाहते हैं। अब बेल्जियम में क्या है, तो बेल्जियम में देखिए 50-50 का मामला है, वहाँ तो एक अलग सरकार ही, मतलब बेल्जियम की सरकार थोड़ी सी अलग है, तो एनीते की तो संभावना पूरी हो जाएगी क्योंकि सरकार जो वहाँ की है वो उसकी मदद कर देगी। श्रीलंका की जहाँ तक बात है तो यहाँ मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे हैं सिंगली भाषा को ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा था, तो श्रीलंका में जो रह रही है उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल होंगी। सेल्वी के लिए चीज़ें थोड़ी मुश्किल हैं और एनीते के लिए चीज़ें थोड़ी आसान। आइए बच्चों, अब एक कहानी दी गई है तो हम कहानी पढ़ें और कहानी के माध्यम से समझें। खलील की उलझन। जैसा कि होता आया है, इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था और बैताल उसकी पीठ पर बैठा था। हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद ना आ जाए, बैताल ने अब कहानी सुनाना शुरू किया। अब जा एक चीज देखिए बच्चों कि कहानी क्या है और ये कैरेक्टर्स क्यों दिए जाते हैं। देखिए, कहानी वो माध्यम होती है जो हमें सिखाती है, बहुत ही मतलब जबरदस्त तरीके से सिखाती है, इसलिए कहानी को शिक्षा का सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है। अब देखिए, विक्रम बैताल की कहानियाँ बहुत फेमस है और एनसीईआरटी की किताबें इसलिए बहुत अमूल्य होती हैं, मतलब एक बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से तैयार की जाती हैं। इस कहानी में आप देखेंगे कितनी बढ़िया तरीके से उन्होंने आपको समझाया, कितना बढ़िया उनका अप्रोच रहा है समझाने के प्रति, जो एक इंसाइट डेवलप करना चाहिए वो डेवलप करने के प्रति। बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे, उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे तो माँ सुन्नी मुसलमान। आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात न थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे। वे साथ रहते थे, मेल जोल होता था, पर गृह युद्ध में वो एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा ऐसी ही लड़ाई में मारा गया था। देखिए बात बता रहा है कि लेबनान है, उसका एक बेरूत शहर है, तो वहाँ लोग रह रहे हैं। तो कौन कौन रह रहे हैं? तो एक ऑर्थोडॉक्स ईसाई है, जो शास्त्र सम्मत इसको कहिए आप, जो बहुत कायदे से रहते हैं, वो ईसाई हैं और मुसलमान भी हैं। तो उन दोनों की माँ बाप दोनों अलग अलग धर्म के थे, लेकिन कोई बात नहीं, तो चलता है। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मेरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए, सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद सिया मुसलमान के लिए तय हुआ। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ था तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, पर दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे। अब देखिए गृह युद्ध हुआ तो जब लेबनान में खत्म हो गया, फिर लेबनान ने क्या तय किया? वहाँ के कुछ लोग बैठे, जो भी मंत्री थे वो बैठे, उन्होंने कहा देखिए इस तरह से तो मामला बिगड़ जाएगा, तो हम क्या करें? सब ने आपस में बैठकर एक फैसला किया कि जो प्रधानमंत्री हैं वो इस धर्म के हो जाएंगे, जो राष्ट्रपति हैं वो किसी और धर्म के होंगे, जो लोकसभा स्पीकर हैं वो और धर्म के होंगे। तो भैया इसके बदले आपको कुछ करना भी होगा, ईसाई फ्रांस से शरण नहीं मांगेंगे और मुसलमान लोग सीरिया से मदद नहीं मांगेंगे, उसके साथ एक होना नहीं चाहेंगे। इन बातों पर वहाँ पे सहमति हो गई। पहले देखिए बात दोनों की बराबर थी, मतलब मुसलमान और ईसाई दोनों लगभग लगभग आबादी बराबर थी। बाद में मुसलमानों की आबादी बहुत रूप से ज्यादा बढ़ गई, लेकिन फिर भी दोनों उस समझौते पर टिके थे। खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वह सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता। वह न तो माँ के धर्म को मानता है और ना ही पिता के। असल में वह चाहता ही नहीं है कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान में भी अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए और जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी समुदाय का हो। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा है उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। अब देखिए खलील साहब चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, वो राष्ट्रपति बने, लेकिन ये संभव है ही नहीं, ये संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है इसके पीछे तर्क देखिए, जो उनके बड़े बुजुर्ग है कहते बेटा अभी तुमने देखा कहाँ है, गृह युद्ध तो हमने देखा, बहुत खूंखार लड़ाई हुई थी और हम लड़ना नहीं चाहते हैं, शांति की व्यवस्था है, हम चाहते हैं कि हम चुपचाप बैठें और शांत रहें। अभी कहानी खत्म भी नहीं हुई थी कि वे टीवी टावर के पास पहुंच गए। यहां वे रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? क्या पुरानी व्यवस्था ही चलने देते या आप कुछ नया करते? बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब देखिए बैताल ने तो विक्रम को उलझन में डाल दिया। उसने कहा आपको क्या लगता है विक्रम, बताओ कि खलील सही है? चलो ठीक है, तुम ही वहां के बन गए तो तुम क्या करोगे? पूरा जो व्यवस्था चल रही है वही चलने दोगे पुरानी या कुछ नया सुधार करोगे? और हाँ, अगर तुम्हारे पास जवाब है और तुम नहीं दोगे तुम्हारी चक्का तुम्हारी जो गाड़ी का पहिया जम जाएगा। तो ये प्रतीकात्मक रूप से तो उधर विक्रम बैताल है, लेकिन यहाँ पे जो बैताल होता है, जो ये हमारा दिमाग ही बैताल है, हमारा दिमाग ही विक्रम, यही प्रश्न उठाता है और यही जवाब देता है। तो अच्छा है कि हमारे दिमाग में बैताल रहना चाहिए। तो एक बैताल ने प्रश्न किया, अब देखिए हमारे दिमाग का जो विक्रम का हिस्सा है वो एक्टिव होता है कि नहीं होता है? क्या आप बेचारे विक्रम के को बैताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं? क्या लगता है बच्चों आपको? थोड़ी सी जटिल तो है। खलील का कहना बिल्कुल सही है कि चुनाव होने चाहिए। देखिए गृह युद्ध हुआ ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग भी मरे, बहुत सारे लोग भी हताहत हुए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सत्ता का बंटवारा उचित ढंग से हो तो रहा है, मतलब उस ढंग से नहीं, धर्म के आधार पर हो रहा है और धीरे धीरे मुसलमान बढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए एक न एक दिन ऐसी स्थिति आएगी जब वहाँ बहुसंख्यक बात बन पेगा तो फिर लोकतंत्र और तो फिर क्या होगा, वहाँ से गृह युद्ध होने की संभावना फिर बढ़ जाएगी। और मान लीजिए अगर राष्ट्रपति के चुनाव हों तो फिर लोगों को खुलकर मिलेगा मौका कि हम वोट दें। इसके अलावा कुछ और नियम भी संशोधित करने होंगे, कि ऐसा भी हो सकता है कि मान लेगा अगर हम इसे चुनाव को कर दें तो चुनाव में
ये भी हो सकता है कि जो मुसलमान बहुसंख्यक है वो राष्ट्रपति बना लें और इस बात इस समझौते के विरुद्ध और भी कई कड़े नियम बनाए, उस तरह से भी युद्ध शुरू हो सकता है। तो अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें कुछ प्रतिबंधों के साथ नए नियम बनाए जाएं, इसमें राष्ट्रपति का चुनाव कोई भी व्यक्ति कर सकता है ना। तो ये इस तरह से इसका विक्रम का ये जवाब हुआ, कुछ प्रतिबंध आपको लगाने होंगे। सत्ता की साझेदारी के रूप, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेने और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। देखिए शुरू में सत्ता के साझेदारी के बहुत विरोध हुए, क्यों विरोध हुआ कि भैया अब निर्णय लेना है तो प्रधानमंत्री लेंगे, उनके अगल बगल के लोग लेंगे, 10-50 लोगों को शामिल करने की क्या जरूरत है, भैया आप भी आ जाओ आप भी आ जाओ, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है और फैसले होंगे भी नहीं। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत मतलब समझिए बच्चों, ये बहुत बड़ी लाइन है, मैं चाहूंगा आपसे अंडरलाइन कर लें कि लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते, एक विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती, इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। देखिए क्या कह रहा है कि लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत ही क्या है कि जनता सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। मीन्स आप जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे, जिस पे भी शासन करेंगे, जितने भी बड़े पोस्ट पे चले जाएंगे, उन सारे के पीछे पावर जनता की है। और यकीन मानिए कि एक ऐसी टॉर्च की कल्पना कीजिए जिसका बैटरी डाउन है या बैटरी खराब है, सेल खराब है, तो फिर वो टॉर्च जलेगी कैसे, आपके पावर दिखेंगे कैसे अगर जनता ही तैयार नहीं। तो लोकतंत्र है तो जनता जाए, अच्छा तो बैटरी को सही क्रम में लगाना भी जरूरी है टॉर्च में, आप उल्टे पुल्टे लगा दें तो नई बैटरियां भी काम नहीं करेंगी। तो जनता को भी अधिकार मिलने चाहिए, जनता को भी उसमें भागीदारी मिलनी चाहिए कि हाँ हाँ हम ऐसे ऐसे करेंगे, उनको भी उस बैटरी की तरह एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए, सत्ता से कनेक्ट होना चाहिए, तभी सत्ता या जो नेता होती है वो विकास के पथ पर चल पाएगी, तभी तो रोशनी होगी, है ना बच्चों। तो ये एक हुआ। दूसरी बात ये भी होता है कि सच्चा लोकतांत्रिक शासन या अच्छा लोकतांत्रिक शासन वो होता है जब बहुत से ज्यादा नागरिक राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बने, क्योंकि फिर सब अपनी बातें कह पाएंगे, बहुत बड़े समूह को मौका मिलेगा कि वो अपनी बातों को रखे और फिर असंतोष भी कम होगा। 2005 में रूस में कुछ नए कानून बने हैं, इन कानूनों को बनाकर रूस के राष्ट्रपति को कुछ और शक्तियां सौंपी गई। इसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस का दौरा किया था। ऊपर दिए गए कार्टून के अनुसार लोकतंत्र और सत्ता के विकेंद्रीकरण में क्या संबंध है, यहाँ जिस चीज की तरफ ध्यान खींचा गया है उसकी पुष्टि में क्या आप कुछ और कार्टून जुटा सकते हैं। देख रहे हैं कि बुश साहब हाँके जा रहे हैं, व्लादिमीर सत्ता की बागडोर केवल हमारे हाथ में रहे, और व्लादिमीर पुतिन साहब भी बैठे हुए हैं, दोनों ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी चल तो रही है और दोनों पर हमेशा वो बैठे रहे, मतलब जैसे वो चाहें डेमोक्रेसी वैसे ही चले। अब आप सत्ता देखिए करा कि विकेंद्रीकरण में क्या संबंध है, यहाँ सत्ता किसके हाथ में आ गई है, इधर सिर्फ पुतिन के हाथ में है और वहां सिर्फ बुश के हाथ में। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता के साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं, आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करें। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है, इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता, हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है, इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है पर यह संसद के अधीन कार्य करती है, न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। देखिए इसको आम बोलचाल की भाषा में कैरोट एंड स्टिक रूल्स भी कहते हैं। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको गाजर मिलेगा और अगर आप गलत करेंगे तो आपको दंड मिलेगा। यहाँ थोड़ा सा ये दूसरे ढंग का है, नियंत्रण और संतुलन, कंट्रोल एंड बैलेंस की ये नीति होती है। मतलब आपको इतना मौका दिया जाएगा कि आप दूसरे पर नियंत्रण रखें लेकिन बैलेंस करने के, इतना नियंत्रण है आपको तानाशाह बनने लायक नियंत्रण नहीं दिया जाएगा, नियंत्रण इतना दिया जाएगा कि आप संतुलन बनाकर रखें। जैसे मान लें कि अब साइकिल पर आप चल रहे हैं तो ठीक है, साइकिल हम कैसे चला रहे हैं, चल रहे हैं ठीक है, आप जब तक बैलेंस में है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आपको नहीं खींच पाएगा। अब मान लें कि ठीक है हम बड़े हीरो बन रहे हैं, हम नीचे कर दिए और अपने ऊपर उठ कुछ कलात्मक किया तो स्वाभाविक रूप से आप नीचे जा गिरेंगे क्योंकि वहाँ वैसी तानाशाही तो चलेगी नहीं कि अब एकदम जमीन से लग के आपका साइकिल का चल रहा है, पहिए हवा में उड़ रहे हैं, ऐसा भी तो नहीं होने वाला है। तो हमने देखिए सत्ता का विकेंद्रीय साझेदारी कई ढंगों से होती, बहुत से उदाहरण है। पहला तो आपने पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था न्यायपालिका को कुछ ताकत होती है, न्यायपालिका चाहे तो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को रोक सकती है। उसके बाद फिर हमने देखा कि कार्यपालिका विधायिका के अधीन होती है, तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं लेकिन तीनों की एक दूसरे में भूमिका भी होती है, तीनों एक दूसरे से बंधे भी होते हैं। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है, कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहां के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में तो यह काम हुआ है पर श्रीलंका में नहीं हुआ। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयां हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है। आप उसमें देखिए न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका में क्या है कि तीनों रिलेटेड तो हैं मगर कोई किसी के अधीन नहीं है, मतलब एक पंक्ति में कोई आगे पीछे नहीं है, तीनों बराबर है। तो वो क्षैतिज वितरण हुआ, तीन चार बच्चे अगर एक लाइन में बैठ जाए एक ही पंक्ति में तो वो क्षैतिज हो गए। जैसे आपके क्लास में टीचर के लिए आप सब बच्चे क्या है, बराबर है, तो उनके लिए वो क्षैतिज बंटवारा हो गया। लेकिन अब फिर आपके कक्षा में कोई मॉनिटर है, कोई और दूसरे पद पोस्ट पर है, कोई बड़ा है, तो इस हिसाब से मान लीजिए मॉनिटर को ज्यादा काम मिलते हैं, फिर दूसरे जो लोग हैं उनको कुछ कम काम मिलते हैं, तो इस हिसाब से जैसे जैसे वहाँ पे पोस्ट डाउन होती चली जाती है, जैसे प्रधानाचार्य को बहुत ज्यादा काम होता है तो फिर चपरासी को भी कम काम होता है ना, तो उधर बांटा जाता है, वो ऊर्ध्वाधर है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। तो कहा जा रहा है कि बच्चों की सरकार के विभिन्न स्तर पर भी बंटवारा होता है, दो स्तर की सरकारें हो सकती हैं। जैसे आप अक्सर अखबारों में पढ़ते होंगे केंद्र ने यह फैसला लिया, केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य ऐसा करें। प्रीच पेपर पढ़िए बच्चों, क्योंकि पेपर एक ऐसी चीज होती है जो आपको पॉलिटी समझाएगी, राजनीति समझाएगी, राज्य व्यवस्था समझाएगी। देखिए पॉलिटिक्स और पॉलिटी में क्या अंतर होता है। पॉलिटिक्स थ्योरेटिकल है, सैद्धांतिक है, किताबों में दर्ज है, और पॉलिटी क्या होती है वो राजनीति जो चलती कैसे है वो प्रैक्टिकल है। तो आप अगर अखबार पढ़ेंगे तो आपको इसमें कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लगातार आपके दिमाग में घूमेंगे और फिर आप समझ पाएंगे। तो जो केंद्र है उनको केंद्र सरकार कहते हैं, संघ सरकार भी कहते हैं, कई अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है। भारत में देखिए हम राज्य सरकार कहते हैं, है ना, कि हमारे देश में बंटवारा, कहीं पर क्षेत्रीय या प्रांतीय सरकार भी कहते हैं जैसे बेल्जियम में। उसके अलावा फिर नीचे भी सत्ता का विकेंद्रीकरण होते जाता है, श्रीलंका में देखिए विकेंद्रीकरण नहीं हुआ, और भी नीचे होता है, पंचायत आ जाती है, नगर पालिका आ जाती है। तो अब देखिए कैसे विकेंद्रीकरण काम करता है, आपको रोड बनाना है, अपने वार्ड मेंबर को बोलेंगे, वार्ड मेंबर मुखिया के सामने प्रस्ताव रखेंगे, मुखिया जी फिर आगे विधायक को देंगे, विधायक सांसद को देंगे, और फिर प्रधानमंत्री और ऊपर सरकार तक बात पहुंचेगी। तो जो देखिए किस तरह से बंटा हुआ है, एक शाखा, अगर आप एक पेड़ बनाएं सरकार को जड़ मान लें, ये सारी शाखाएं हैं जो धीरे 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 धीरे। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों में को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती, ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझने लगे। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के लिए अलग अलग तरीकों पर हम इकाई 2 में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सत्ता का बंटवारा तो कई ढंग पर हो सकता है। इसे मान लीजिए कि भाषाई और धार्मिक समूह पे भी हो सकते हैं कि ठीक है, जो भाषा के कम भाषाई वाले हैं या जिनकी संख्या कम है, वैसे धार्मिक लोगों को ज्यादा अधिकार दो। मान लीजिए दो विकलांग, आप किसी के साथ रेस लगाएं और वो विकलांग है, तो क्या होगा? आपके साथ वो हार जाएगा। तो दो उपाय है, या तो आपको भी आपका भी पैर तोड़ दिया जाए समानता के लिए, या समता के लिए आपके एक पैर रस्सी या उसको कुछ आगे कर दिया जाए। तो देखिए, आपके पैर तोड़ दिए जाए तब तो दोनों ही नुकसान में रहेंगे, तो उन्हीं को कुछ आगे कर दिया जाए ताकि दौड़ लगभग लगभग बराबरी का संपन्न हो। तो इसके लिए हम उन्हें आरक्षण भी देते हैं। आपने पिछले में पढ़ा भी था कि कुछ लोगों को आरक्षण मिलता है, कुछ समूहों को आरक्षण दिया जाता है। तो ये भी सत्ता में साझेदारी का रूप होता है कि वो लोग भी आए, अपना पार्टिसिपेशन करें। ऐसा ना, उन्हें ये ना लगे कि शासन उनकी परवाह नहीं करता है या उनसे अलग है, उनकी उनकी जरा भी फिक्र नहीं है। जैसे बहुत से विकलांग हैं या अल्पसंख्यक लोग हैं, तो उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि सरकार या शासन जो व्यवस्था है वो हमसे भिन्न है, क्योंकि फिर तो टकराव बढ़ जाएगा। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित कर और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती, पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंद्वता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाले पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर यह समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। इकाई 3 में हम राजनीतिक दल, दबाव समूह और सामाजिक आंदोलनों की कार्यप्रणाली पर गौर करेंगे। अभी बच्चों एक बहुत अच्छी बात इसमें देखिए, दो वर्ड आए, दबाव समूह आया है। तो दबाव समूह क्या होता है? मान लीजिए कि ठीक है, मैं शिक्षक हूँ, सरकारी शिक्षक हूँ, और सरकार हमारा वेतन नहीं बढ़ा रही है। तो हम लोग एक समूह बना लेते हैं कि ठीक है, 2-3 लाख शिक्षक हैं और सब मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इतनी बड़ी जनसंख्या है, सरकार को तो वोट चाहिए। अब वो कहेंगे हम वोट आपको देंगे नहीं, विरोध प्रदर्शन करेंगे, हमारे परिवार नहीं देंगे। तो सरकार पर दबाव बनता है कि उनके लिए कुछ किए जाए, उनके लिए कुछ नियम बनाए जाए, उनको कुछ फायदा पहुंचाया जाए। तो फिर क्या हुआ? अब देखिए, उन्होंने सत्ता में साझेदारी दे दी, सत्ता में साझेदारी हुई ना, उनके लिए नियम बनाए जा रहे हैं या वो भी नियम को बनवा रहे हैं, इस तरह से कहा जाए तो, है ना, वो सत्ता में साझेदारी कर रहे हैं। लोकतांत्रिक पार्टियां करती हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, तो ये विकल्प बना देती है कि ठीक है भैया, आपको पसंद नहीं है, आप प्रधानमंत्री नहीं बदल सकते, वहां तक बात नहीं पहुंच सकती। तो राजनीतिक पार्टी को आप चुन लेते हैं, नहीं हम इसे करेंगे, हम इसे वोट देंगे। तो राजनीतिक पार्टियां आपके सामने विकल्प होती है, उसे नहीं आप मुझे दीजिए। सरकारें बदलती रहती हैं। अब देखिए, सरकार बदलती है तो कैसे बदलती है? लोग ही तो बदलते हैं सरकार को, है ना। अब लोग ही तो वोट दे के सरकार को बदलते हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं? सत्ता में साझेदारी कर रहे हैं। जब उन्हें लगा कि ये सरकार अच्छी नहीं है, ये सरकार आ गई, ये सरकार अच्छी नहीं है, तो ये सरकार आ गई, है ना। तो इस तरह से वो भी सत्ता में साझेदारी करते हैं और भाग लेते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम अगले अध्यायों में फिर धीरे धीरे राजनीतिक दल, दबाव समूह और सामाजिक आंदोलनों की कार्यप्रणाली वगैरह पर गौर करेंगे। देखिए, राजनीति एक बहुत ही प्यारा विषय होता है, अगर आप इसे थोड़े से ध्यान के साथ और अखबारों के साथ पढ़ें तो। यहाँ मैं आपसे आज की चर्चा करना चाहता हूँ कि आज हमने सत्ता की साझेदारी के रूप देखे, खलील की उलझन सुलझाई कि खलील लेबनान में है, वह राष्ट्रपति बनना चाहता है लेकिन वहाँ की समस्याएं ऐसी है। तो हमने निष्कर्ष निकाला कि नहीं नहीं वहाँ की व्यवस्था तो ठीक ही चल रही है, लेकिन वहाँ पे चुनाव राष्ट्रपति के होने चाहिए और बिल्कुल हर कोई भी जाति का खड़ा हो जाए, किसी भी धर्म का खड़ा हो जाए, उस आधार पर उसे वहाँ वोट मिल जाने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे देखिए सब लगभग लगभग कोई अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक नहीं, लगभग लगभग सबकी संख्याएं बराबर हैं, तो उस तरह से मौका लोगों को मिलेगा अपनी पसंद चुनने का, और फिर ये धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं होगा, बाद में फिर गृहयुद्ध भी हो सकता है। फिर हमने सत्ता के साझेदारी के विभिन्न रूप देखे कि नई नई लोकतंत्र में हो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है। फिर हमने देखा कि सरकार के स्तरें भी अलग अलग होती हैं, तो शासन के विभिन्न अंगों पर भी हमने सत्ता की साझेदारी देखी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अध्याय कुछ कुछ समझ में आया होगा। थोड़े बहुत चीज़ें और भी हैं जिन्हें हम देखते रहेंगे। प्रिय बच्चों, मैं आपका दोस्त सावन अगले ऑडियो तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।